नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगुल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती हुई युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकी बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वो अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश की वजह से टॉस अब तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन।